इनका महाराज थे महाराज बिमालदेव।
महाराज बिमालदेव इनका ऐश्वर्य वो इंद्र सूर्यपति इंद्र के समान इसका ऐश्वर्य था। इनके सारी प्रजा बहुत ही धार्मिक प्रजा था, बहुत ही पायस। और इनके राज्य में कोई कमी नहीं था, लेकिन राजा बिमालदेव के पास 1,00,000 सुंदर सुंदर रानियां होने से भी उनका एक भी पुत्र नहीं हुए। 1,00,000 सुंदर सुंदर रानियां थी, लेकिन एक ही पुत्र नहीं आए। इनके पास 1,00,00,000 पुत्रियां थी, लेकिन एक भी लड़का नहीं आया। तो उनके पास सब कुछ होने से भी वो थोड़ा दुखी था। एक बार यज्ञवल्क्य ऋषि इनके राज्य में प्रवेश किया और उन्होंने भी देखा बहुत ही सुंदर राज्य है, सब लोग भक्त है, सब बहुत धार्मिक है, इनका ऐश्वर्य सूर्यपति इंद्र के समान भी है। तो महाराज बिमालदेव के पास आए थे और महाराज बिमालदेव उनको देखकर वो तुरंत अपने सिंहासन पर विराजे, उसका पाव धोया, ये पानी इनके ऊपर सब परिवार लोगों के ऊपर चढ़ाया और हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए। महाराज यज्ञवल्क्य ने कहा कि हे राजन, हमने आपके राज्य में प्रवेश किया, प्रवेश करके देखा कि अब यह सारा प्रजा बहुत ही धार्मिक है और जो ऐश्वर्य आपके पास सूर्यपति इंद्र के पास भी नहीं है, इतना ऐश्वर्य आपके राज्य में हमने देखा। रावे हम दर्शन करें आपका सुंदर सुंदर रानियां, लेकिन आपका मुंह से हम देख सकते हैं कि आपके मन में थोड़ा सा दुख है, जैसे प्रॉपर बताते हैं फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड, आई डोंट नो हाउ यू से दैट इन हिंदी। और महाराज बिमालदेव बोला, हाँ महाराज, जो कुछ आप बताते हैं वो सत्य है, किंतु महाराज मेरे एक ही दुख है कि एक ही पुत्र नहीं है। महाराज मेरे पास 1,00,00,000 पुत्रियां हैं, लेकिन एक भी पुत्र नहीं है, इसलिए मेरे मन में थोड़ा सा दुख है। तो महाराज यज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं आपको ऐसा वरदान देंगे कि पुत्र होने का से भी आगे है, पुत्र होने के वो तुच्छ इसके सामने हो जाएंगे। अभी ये द्वापर युग का अंत होने वाला है और आपके सब पुत्रियां वो शादी लायक है, और अभी मथुरा में भगवान का अवतार है, आपका दूध वहां भेजकर उनको यह ले आइए और ये सारी पुत्रियां से इनके शादी करवाइए, आपको ऐसे वरदान मिलेंगे कि पुत्र वरदान इसके सामने छूटे हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन तुम्हारा ये अवतार का क्या लक्षण है, कैसे पहचान लेंगे हमारे दूत? और यज्ञ मौके महाराज ने कहा इनका आंख है वो कमल के समान सुंदर है, इसके श्याम वर्ण है जैसे श्रावण का बदल मेघ, इसके पीतांबर धोती है, इसके मुकुट में मोर पंख है, इनके चार भुज है जिसमें चक्र गदा पद्म और शंख, ऐसे पहचान लेंगे। और ये वसुदेव के सुपुत्र है। अच्छा, सो तुरंत उसके दूत भेजा मथुरा के पास, उनके दूत मथुरा में आए और सबसे पूछा कि ये वसुदेव का पुत्र कौन है, और सब लोग उनको देखकर वो घबराने लगे और कुछ बताते नहीं, वो चले गए। कोई लोगों ने बताया कि वो वासुदेव के कोई पुत्र नहीं है, किसी ने बताया कि सब मर गए। जब भी प्रश्न उठा वो सब घबरा, किसी को सीधे जवाब नहीं दिया। फिर एक सज्जन इनके पास आए थे, ये दूत के पास आए थे, बोले तो एकांत में ले गए कि तुम बहुत सज्जन आदमी हैं, हमारे राज्य में मथुरा में बहुत ही क्रूर राजा है कांस, और इसी राज्य में वसुदेव के पुत्र के बारे में पूछना अवैध है, इसलिए कोई सीधे जवाब आपको नहीं देंगे, और आप आगे पूछेंगे तो फिर आपका सिर आपके शरीर से अलग हो जाएंगे। मैं प्रीतिभाव से बता रहा है, मेरे कोई प्रतिकूल भाव नहीं है, मैं केवल आपका बहुत अच्छा सुझाव दे रहा है कि जहां से आए वापस लौट चलो, ये बहुत खतरनाक स्थान है, आप बहुत खतरनाक प्रश्न पूछ रहे तो वापस जाइए, ये हम तो प्रेम से बता रहे हैं, हमें कोई प्रतिकूल भाव नहीं है। तो वो निराश हो गया, तो फिर चलने लगे, सो जमुना पार कर गोकुल के पास आए। जब गोकुल आए देखा, उसने देखा कि एक सुंदर सुंदर बालक है जो श्याम वर्ण है, इनका पीतांबर धोती है, इनका मुकुट में मोर पंख है, कमल के समान आंखें हैं, लेकिन केवल दो भुज है, ये चार भुज है, शंख गदा पद्म ये कुछ नहीं है, केवल दो भुज है, एक वंशी है बस, लेकिन और जो यज्ञवल्क्य ने बताया वो सब है लक्षण है, लेकिन ये चतुर्भुज नहीं है। सो ये बहुत भी चतुर है। तो वो सिंध वापस गए थे और सब कुछ महाराज बिमालदेव के सामने बताए, तो उसी समय नारद मुनि, क्योंकि हमेशा जब उचित समय है नारद मुनि पहुंच जाते हैं, उसी समय नारद मुनि पहुंचे। सो महाराज बिमालदेव नारद मुनि से सब कुछ समझाया और नारद मुनि हंसने लगे, अरे महाराज वही है जैसे आप ढूंढ रहे हैं, वही है जो बालक अभी गोकुल में, वही है विष्णु का अवतार, भगवान का अवतार, लेकिन बाद में जब वो मथुरा जाएगा द्वारका जाएगा वो चतुर्भुज रूप दिखाएगा, अभी नहीं, लेकिन वही है, उनके पास चले जाइए, आपके दूत वहां भेजो। सो ये दूत वापस चले गए। और देखा कि वो सोचे कि ये बहुत गोपनीय बात सो एकांत में अकेले बात करना चाहिए, लेकिन ये लाला हमेशा कभी अकेले नहीं है, कभी वो ये माँ यशोदा के पास है, ये नंद बाबा के पास है, ये ग्वाल बाल के पास है, ये गोपियाँ के पास है, कोई समय नहीं मिले। एक समय ये सब ग्वाल बाल जैसे ये सामने वाले वृक्ष कुंड के ऊपर है, वो एक वृक्ष जमुने के ऊपर था, ये सब ग्वाल बाल ऊपर चढ़कर वो जुने मुने खुद कूदते थे च्यू 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 च्यू, और ठहरने के पश्चात सब लोग तो नींद आया तो सब लोग सोने लगे, और ठाकुर जी भी एक मूल के ऊपर उसका सिर लगाए आराम करने लगे। तो फिर मौका मिले, ये दूत उनके पास गए, सब कुछ बताए, और न न न न बताए, अरे क्यों पहले नहीं बताई, आप अकेले कभी नहीं मिले, आज तो मौका मिले, चलो तुरंत। तो ठाकुर जी के शक्ति से वो ये आकाश मार्ग से गए सिंध, बिना पाकिस्तान एयरलाइंस और इंडियन एयरलाइंस, आकाश मार्ग से। उस समय महाराज बिमलदेव यज्ञ कर रहा था, और जब देखा कि उनके दूत ये स्वर्ण ये श्याम वर्ण के बालक के पास आ रहा है, तो सब ब्राह्मणों को बोले कि अभी ये विवाह यज्ञ का मंत्र उच्चारण कीजिए, आप जानती विवाह यज्ञ मैरिज, हमको पता नहीं है, मेरे संस्कृत के ज्ञान थोड़े हैं, हम देखते कि दो शब्द बहुत मिलते जुलते हैं, विवाह और विवाह के पश्चात क्या होते हैं, विवाद। मेरे संस्कृत के ज्ञान थोड़े हैं, हम जानते नहीं अगर कोई संबंध है, ऐसा लगता है कि कोई संबंध है, विवाह के बाद विवाद होते हैं। तो फिर विवाह यज्ञ का मंत्र उच्चारण करने लगे, और महाराज विमलदेव ये करोड़ पुत्रियों का हाथ नंदनंदन को दे दिया, और तुरंत बैकुंठ से एक वाहन आए, और ये सब विष्णुदूत महाराज विमलदेव इस बैकुंठ वाहन में बिठाया, और सीधे ये स्वयं शरीर में सीधे बैकुंठ चले गए, ये पुत्र के समान का वरदान, पुत्र होने का वरदान के सामने ठुचा हो गया, उस सीधे बैकुंठ चले गए। और ठाकुर जी ये करोड़ों गोपियां यह लाए कामयवान में, और यह रास करने लगे, जब रास करने लगे सब लोग आनंद में डूब गए, प्रेम आनंद में डूब गए, ये सब गोपियां का अंक से आंसू बहने लगे, और ये सब प्रेम आंसू इसी कुंड में बह गए, इसी से विमल कुंड प्रकट हो गए, प्रेम आंसू से विमल कुंड की। हमारे पास ज्यादा समय नहीं, लेकिन इस विमल कुंड के पास ये वृक्ष प्रसन्न का लीला के पश्चात ये सब पांडव यहां रहने लगे विमल कुंड के पास, ये ब्रज लीला के बाद जब ये पांडव यहाँ आए ये भी मुलकुंड के तट पर रहने लगे। तो आप सब जानते हैं दुर्वास मुनि आए थे, तो ये लीला ये हुआ कि महाराज युधिष्ठिर बोले कि आप सब स्नान कर लीजिए, हम प्रसाद तैयार करेंगे, और फिर द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी तो खा लिया, क्योंकि उनका बर्तन था कि जब जब तक वो नहीं कुछ नहीं खाया वो अनंत अनलिमिटेड प्रसाद, अनलिमिटेड हाउ डू यू से, असीमित प्रसाद देगा, लेकिन वो तो खा लिया, उन्होंने खा लिया, तो रोने लगे। ठाकुर जी आए कहे द्रौपदी मैं बहुत भूखी हूँ, इसी से मैं रो रही हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, ना आपके लिए ना ये सारी द्रव्यास मुनि और 10,000 शिष्य के लिए, ठीक है द्रौपदी आपका बर्तन यह लाओ, और थोड़ा सा आधा चावल का दाना वहाँ लगा था, और ठाकुर जी ये ले लिया और संतुष्ट हो गया, और उस समय जमुना नदी यहां पास बहते थे, ये 5000 साल की बात है, 5000 साल के पहले की बात है, जमुना पास, ये सब जमुना में, ये सब ऋषियां, इस अभी हम भोजन थाली जाएंगे, इसके पश्चात जब हम चलो चलो अभी ब्योमासर गुफा सब हो जाएंगे, तो ऐसा हो गया, फिर बोला क्या करूं, अगर हम हमारे पास बुक नहीं है, हम जाएंगे और महाराज युधिष्ठिर के प्रसाद नहीं पाएंगे, बहुत अपराध हो जाएंगे, क्या करूं, क्या करेंगे। और फिर ठाकुर जी ने भीम को भेजा कि उनको बुलाओ, और ये सब ऋषि देखे कि भीम आ रहा है बुलाने के लिए, सो बिना सुख कर उनके गीली खपर में वो सब नदी से निकल गए और चलने लगे, दौड़ने लगे, वो भीम आएगा हम नहीं जाएंगे तो वो भीम क्या करेंगे। तो गीली खपर में सब ऋषियां वन में चल गए और भीम कुछ नहीं, कोई नहीं पाया। सो यही स्थान है, बहुत से ऐसे लीला हुआ। सभी प्रसाद के बारे में बात किया तो आपको तो भूख लगे ना। सो एक स्थान है खामियावान में, इसका नाम है भोजन थाली, चाहे स्वयं ये पत्थर ठाकुर जी का थाली और कटोरे बन गए। सो उसी स्थान पे हम लोग भोग लगाएंगे और वहां हम लोग प्रसाद पाएंगे। विमल कुंड की काम्यवान की शील प्रभुपाद की गो प्रमानंद जय जय एक और बात, और ये सब गोपियां विमल देव के पुत्रियां कौन थी कि आप देखते हैं कि यहां बहुत से बंदर हैं, और कोई स्थान वृंदावन में ऐसा नहीं है जैसे यहां इतना बंदर है, क्योंकि पूर्व जन्म में ये सब विमल देव के पुत्रियां जितनी भी स्त्री थी अयोध्या में वो सब भगवान श्री राम से शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं हो सकते थे। सो उसका भाव स्वीकार इसी तरह उसका इच्छा पूर्ण किया। सो ये सब अब अयोध्या वासिनी गोपियां हैं, जैसे मिथिला वासिनी गोपी भी है, ये ऋषिचारी जो वन में था वो ऋषिचारी गोपी है, ये श्रुतिचारी गोपी है, ये सब अलग अलग श्रेणी के गोपी है, ये सब अयोध्या वासिनी गोपियां थी। इसलिए राम का संग है, बहुत से बंदर इस स्थान पे रहते हैं, अगर ये हम प्रसाद पाएंगे ये बंदर हमको बहुत परेशान करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र की जाएंगे और भोजन थाली चले जाएंगे।